अष्टम अध्याय उच्चारण शिक्षण। उच्चारण का महत्व। संस्कृत में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है। शिक्षा नामक वेदांग उच्चारण की विद्या से ही संबद्ध है। अन्य भाषाओं में भी उच्चारण को महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु शुद्धोच्चारण की जितनी महत्ता संस्कृत में है उतनी अन्य भाषाओं में नहीं है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में यहाँ तक लिख दिया है कि एको शब्द समज्ञातः स्वप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुग्भवति, अर्थात एक भी शब्द यदि अच्छी तरह जाना हुआ और अच्छी तरह प्रयोग किया हुआ इस श्लोक एवं परलोक में इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। वेदाध्ययन में उच्चारण का विशेष महत्व था, इसीलिए वेदों को गुरु ने अपने शिष्य को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाता है। पाणिनी ने लिखा है, मंत्रो हीना स्वरतो वर्णितो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमः स वाग्वज्रो यजमानः हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराघात। अर्थात स्वरों एवं वर्णों के शुद्ध उच्चारण से रहित मंत्र अर्थ का अनर्थ कर देता है। इस प्रकार का अशुद्ध मंत्र यजमान के लिए भी वज्र की भांति घातक होता है। जिस प्रकार इंद्र का शत्रु स्वर से मिथ्या प्रयोग के कारण स्वयं मारा गया, इसका संकेत एक वैदिक कक्षा की ओर है। विश्वरूप नामक असुर त्वष्टा का पुत्र था। विश्वरूप ने अपनी कठिन तपस्या से इंद्र का आसन विचलित कर दिया। घबराए हुए इंद्र ने विश्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, वे सफल हुए और विश्वरूप का अंत हो गया। इस पर त्वष्टा को बहुत शोक एवं क्रोध हुआ, अतः त्वष्टा ने एक अभिचारिक यज्ञ किया। इस यज्ञ में पुरोहितों ने इंद्र शत्रुर्वी धस्व, इंद्र के शत्रु अर्थात वित्रासुर की वृद्धि हो मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ में आहुति दी। इंद्र शत्रु समस्त पद है, इसका समास विग्रह दो प्रकार से हो सकता है, एक तो इंद्र का शत्रु और दूसरा इंद्र ही हो शत्रु जिसका। प्रथम विग्रह के अनुसार यह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और द्वितीय विग्रह के अनुसार बहुव्रीहि समास होगा। प्रथम के अनुसार वित्रासुर की वृद्धि की कामना है, किंतु दूसरे के अनुसार द्वंद्व की ही वृद्धि की कामना है। इस समस्त पद में निहित दोनों अर्थ उच्चारण के भेद से हो जाएंगे। पहली दशा में मंत्र का उच्चारण इंद्र शत्रुर्वी ध्वसः के रूप में होगा और दूसरी में इंद्र शत्रुर्वी वर्धस्व होगा। दूसरे उच्चारण में इंद्र पर अधिक बल दिया गया है। पुरोहितों ने दूसरे अर्थ के अनुसार ही मंत्र पाठ किया, जिससे यज्ञ के अंत में वित्रासुर नामक असुर का आविर्भाव तो हुआ, किंतु इंद्र के अंत में उसको मारने में असफलता प्राप्त कर ली। शुद्ध उच्चारण की महत्ता दर्शाने वाला एक अन्य श्लोक संस्कृत में बहुत प्रचलित है। वह श्लोक इस प्रकार है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् स्वजना स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृच्छकृत। इस श्लोक में पिता पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, यद्यपि तुमने बहुत अध्ययन कर लिया तथापि अब व्याकरण पढ़ो। यदि तुम व्याकरण पढ़ लोगे तो स्वजन के स्थान पर स्वजन, सकल के स्थान पर सकल और सकृत के स्थान पर सकृत का उच्चारण ना करोगे। इस श्लोक में उच्चारण भेद से ही अर्थ का अनर्थ दिखाया गया है। स और श के उच्चारण में छात्र प्रायः भूल सकते हैं, किंतु इस भूल से अर्थ ही बदल जाता है। स्वजन का अर्थ आत्मीय लोग है और स्वजन का अर्थ है कुत्ते लोग। सकल संपूर्ण के लिए आता है तो सकल खंड के लिए, और सकृत का अर्थ एक बार है तो सकृत का अर्थ है विष्टा। पाणिनि ने भी शुद्ध उच्चारण की महत्ता को निम्नलिखित श्लोक में व्यक्त किया है। एवं वर्णः प्रयोक्तव्यः नाक व्यक्तः न च पीडितः सम्यर्गर्व प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते सुतीर्था दागतम व्यक्तम स्वाम्यानायाम सुनव्यवस्थितम सुस्वर्णेन सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्म राजते। अर्थात ब्रह्मा की प्राप्ति भी सुस्पष्ट सुव्यवस्थित सुस्वर एवं सुप्रयुक्त वर्णों से होती है, अतः वर्णों का प्रयोग अव्यक्त या पीड़ित ना हो। वर्णोच्चारण, वर्णों का उच्चारण किस प्रकार हो, इसके विषय में पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि ने बताया है। व्याग्रह यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्रियाभ्याम न च पीडयेत भीता पतन भेदाभ्यम त्वद् द्वारणानन प्रयोजयेत। अर्थात जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चों को मुंह में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि ना बच्चों को दांत चुभे और ना ही मुंह से गिर पड़े, इसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करते समय उनका स्थान आदि ठीक हो और स्पष्ट स्वरित हो, किंतु ऐसा ना हो कि अक्षर मुंह के अंदर ही रह जाएं या फिर बाहर गिरे हुए दिखाई पड़ें। इसी बात को महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार कहा है। मधुरम च न चाव्यक्तम व्यक्तम चापि न पीडितम स नाथस्य कदय कस्य न वर्णः संकरगतः यथा सुमतो नागेन्द्रः पदात् पदं निधापयेत् एवं पदं पदात्य दत्यं दर्शनीयं पृथक पृथक। अर्थात वर्णों का उच्चारण मधुर हो तथा व्यक्त स्पष्ट हो, व्यक्त होते हुए भी अन्य वर्णों से प्रभावित ना हो। सभी वर्णों का उच्चारण इस प्रकार किया जाए कि वे एक दूसरे से मिले हुए ना प्रतीत हों। जिस प्रकार मदमत गज एक पैर रखने के पश्चात बड़ी सावधानी से दूसरा पैर रखता है, उसी प्रकार एक पद बोलने के पश्चात दूसरे पद को बड़ी सावधानी से बोला जाए, जिससे सभी पद स्पष्ट हों और पृथक रूप में दर्शनीय हों। पदोच्चारण, कभी कभी पदों के उच्चारण में स्पष्टता का ध्यान ना रखने के कारण या किसी पद पर अनभीष्ट बलाघात करने के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण अर्थ निम्नलिखित संस्कृत वाक्य का उच्चारण करना है। सह फलम खादति, इस वाक्य में यदि सह का उच्चारण व्यक्त ना हुआ और आगे के वर्ण से प्रभावित हो गया तो संभव है कि विसर्ग का लोप हो जाए और सह फलम के स्थान पर सफल हो जाए। किसी पद पर विशेष बलाघात करने से अर्थ बदल जाता है, जैसे यदि सह पर बल दे दिया जाए तो अर्थ होगा कि व्यक्ति वही व्यक्ति फल खा रहा है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। सह पर ही बल तो दिया जाए किंतु कुछ कम, तो पूरा वाक्य प्रश्न सूचक बन जाएगा और अर्थ होगा कि क्या वह फल खाता है। यदि फल पर बल दिया जाए तो अर्थ बदल जाएगा और तात्पर्य यह निकलेगा कि वह फल ही खा रहा है, कोई अन्य पदार्थ नहीं। यदि खादति पर बलाघात हो तो अर्थ निकलेगा कि वह फल को खा रहा है, कुछ और नहीं कर रहा। इसीलिए याज्ञवल्क ने हाथी की चाल का उदाहरण दिया है, अर्थात सामान्य अर्थ में एक पद के बाद दूसरा पद स्पष्ट रूप से बोला जाए ताकि किसी पद पर अनभीष्ट बलाघात ना हो जाए। उच्चारण दोष, वर्णों का उच्चारण किस प्रकार ना करना चाहिए इस पर भी विचार किया गया है। इस संदर्भ में पाणिनी का अग्रलिखित श्लोक हमारा मार्गदर्शन करता है। उपाम सुदृष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गद गदितम प्रगीतम निष्पीडितम ग्रस्त पदाक्षरम च वेदन्नदीन न तु सानुनायस्यम। अर्थात वर्णों का उच्चारण निम्नलिखित ढंग से करना उचित नहीं है। जीभ दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुख में काट देना। द्वितीय, त्वरित अर्थात वर्णों को बड़ी जल्दी जल्दी बोलना। तृतीय, निरस्त अर्थात वर्णों को फेंकता हुआ बोलना। चतुर्थ, विलंबित अर्थात रुक रुक कर बोलना। पंचम, गदगदित अर्थात गदगद स्वर में बोलना। षष्ठ, प्रगीत अर्थात गा गा कर बोलना। सप्तम, निष्पीडित अर्थात तुतलाकर एवं मुख के भीतर ही बुदबुदाते हुए बोलना या वर्णों का पीड़ित करना। अष्टम, ग्रस्त पदाक्षर अर्थात अक्षरों व पदों के बीच में खा जाना या अपूर्ण उच्चारण करना। नवम, दीन अर्थात दीनता के स्वर में बोलना। दसम, सानुनास्य अर्थात सभी वर्णों को नाक से मिमियाकर बोलना। शुद्धोच्चारण की सामर्थ्य, उपर्युक्त 10 लक्षण वर्णों के अशुद्ध उच्चारण के हैं, इन 10 को दूर करना आवश्यक है। पाणिनीय शिक्षा में इस बात की ओर भी संकेत किया है कि किस प्रकार के पुरुष शुद्धोच्चारण करने में समर्थ हैं। उच्चारण में कुछ शारीरिक अंगों की आकृति एवं उच्चारणकर्ता की प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। इसी बात को पाणिनीय शिक्षा में इस प्रकार कहा गया है। प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दंतोष्ठो यस्य शोभना प्रगल्भश्च विनीतश्च सवर्णान वक्तुमर्हति। अर्थात जिसकी प्रकृति अच्छी है या जिसकी संवेगात्मक दशा संतुलित है, जिसके दांत और ओष्ठ अच्छे हैं, जो उच्चारण करने में प्रगल्भ है, जो विनयी है और वर्णों का उचित उच्चारण कर सकता है, इसीलिए कहा गया है कि प्रश्नचित्त होकर तथा चेष्टाओं पर नियंत्रण करके उच्चारण करना चाहिए। इसी संदर्भ में महर्षि पाणिनी का दूसरा श्लोक देखिए। न करालो न लंबोष्ठो न व्यक्तो नानुनासिकः गदगदो बद्ध जीवश्च न वर्णान वक्तुमर्हति। अर्थात जिसकी आकृति भयंकर है, ओष्ठ लंबे हैं, जो नाक से बोलता है, जो अत्यधिक भावुक है और गदगद हो जाता है और जिसकी जीभ बंधी हुई है, ऐसा व्यक्ति वर्णों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। उच्चारण की शिक्षा, छात्रों को उच्चारण की विधिवत शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वे वर्णों का स्थान प्रयत्न आदि जानकर शुद्ध उच्चारण कर सकें। स्थान प्रयत्न आदि के सम्यक ज्ञान के अभाव में छात्र रि ग श ए औ छ त्र श द्य व आदि वर्णों का उच्चारण अशुद्ध करते हैं और अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। वर्णों के अशुद्ध उच्चारण में पदों का भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। कभी कभी उदात्त अनुदात्त स्वरित में तथा ह्रस्व और दीर्घ में भी भ्रम हो जाता है। इनकी ओर भी छात्रों को प्रारंभ में ही बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। शब्दों के उच्चारण में कभी कभी किसी वर्ण के उच्चारण का शीघ्रतावश लोप हो जाता है या प्रारंभिक छात्रों में सामान्य दोष रहता है। इस प्रकार भारतीय पर्वतीय उद्देश्य आदि को वे भारती पार्वती उद्देश्य की भांति कहने लगते हैं। कभी-कभी छात्र बीच में भी किसी अक्षर का लोप कर देते हैं, जैसे अध्ययन को अध्ययन कह देते हैं। लोप की ही भांति कभी-कभी शब्द के आदि में किसी वर्ण का आगम भी कर लेते हैं। स्पष्ट को अस्पष्ट, स्थान को अस्थान, स्पर्श को अस्पर्श, स्नान को स्नान कहने में छात्र अ का आगम कर लेते हैं, जो अशुद्ध है। कभी-कभी कोई छात्र वर्णों का लोप या आगम ना करके विद्यमान वर्णों के स्थानों में परिवर्तन कर देता है। ब्राह्मण को ब्राह्मीण, ब्रह्म को ब्रह्म तथा विशेषण को विशेषण कहने में छात्र वर्ण विपर्यय की अशुद्धि कर देता है। पदों के उच्चारण में उपर्युक्त दोषों से छात्रों को बचना चाहिए। पदों पर कभी-कभी अनावश्यक बल दे दिया जाता है, जिससे समूचे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। पीछे सह फलम खादति का उच्चारण लेकर इस बात को स्पष्ट किया गया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णों, पदों और वाक्यों की सार्थकता तभी है जबकि वे शुद्ध रूप में उच्चरित हों, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाने का भय बना रहता है। उवा, या, ण, न, म को प्रायः अनुस्वार लिख दिया जाता है। मुद्रण की सुविधा की दृष्टि से प्रायः संगम, चंचल, पंडित, संतान, संभव, संबंध लिखा जाता है, किंतु उच्चारण की दृष्टि से इनमें ऊपर का अनुस्वार एक सा नहीं है। संगम और संतान को एक दो बार कहकर पाठक स्वयं इसका अंतर पहचान लेंगे। उच्चारण संगम संतान की भांति होता है। संगम या संतान कहना भी कठिन है। इसी प्रकार संबंध शब्द को देखिए, इससे दोनों अनुस्वारों का उच्चारण भिन्न है। इसे संबंध कहना शुद्ध होगा, ना कि संबंध या संबंध। इस प्रकार के दोषों की ओर छात्रों का ध्यान प्रारंभ में ही दिला देना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि बड़े धैर्य से बालक के अशुद्ध उच्चारण के दोष को दूर करके उसे शुद्ध एवं स्पष्ट ढंग से बोलना सिखाए। इस दिशा में महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत के अध्यापक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध और यथासंभव, छात्र को अन्य विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का उच्चारण भी स्पष्ट एवं शुद्ध हो। शुद्ध उच्चारण बहुत कुछ अनुकरण से आता है। यदि बालक वर्णों एवं पदों का शुद्ध उच्चारण सुनता रहता है तो वह भी शुद्ध उच्चारण करने लगता है। यदि वह अशुद्ध एवं अस्पष्ट उच्चारण अपने गुरुओं से ही सुनता है तो वह भी अशुद्ध बोलने लगता है। शुद्ध उच्चारण की दिशा में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा एवं लाभदायक भी। प्रथम, छात्र ज्यों ही अशुद्ध उच्चारण करे तो उसे तत्काल रोका जाए और शुद्ध उच्चारण बताया जाए। द्वितीय, वर्णों के उच्चारण स्थानों का छात्रों को ज्ञान करा देना लाभदायक होगा। तृतीय, अभ्यास मुख्य विधि है। आवृत्ति और पुनरावृत्ति से छात्र को शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाए। अभ्यास से जीभ, जबड़े और ओष्ठ मंज जाते हैं तथा उच्चारण सरलता से होने लगता है। चतुर्थ, छात्र को बहुश्रुत होना चाहिए। यदि वह अनेक बार वर्णों को सुनेगा तो उनका उच्चारण सरलता से करेगा। पंचम, अध्यापकों को अपना उच्चारण भी शुद्ध रखना चाहिए। षष्ठ, गद्य पाठ, पद्य पाठ, नाटक, कहानी, द्रुत पाठ आदि सभी से कठिन शब्दों का अनुवाचन एवं उच्चारण अभ्यास आदि कक्षा से करा लिया जाए। इससे अयोग्य विद्यार्थी भी धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण सीख लेते हैं। सप्तम, किंतु उच्चारण शिक्षण जितना ही व्यक्तिगत होगा उतना ही कारगर होगा, अतः छात्रों के उच्चारण पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। अष्टम, केवल एक वर्ग का उच्चारण अभ्यास करना भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है। भाषा में वाक्य पूर्ण इकाई है, शब्द भी सार्थक इकाई है, अतः संपूर्ण वाक्य का अथवा शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराया जाए, ना कि किसी वर्ण का। यदि व श श रि ज्ञ आदि वर्णों का शुद्ध उच्चारण ज्ञान देना है तो कम से कम इतना किया जाए कि शब्द ऐसे लिए जाएं जिनमें ये वर्ण आदि मध्य एवं अंत में आए हों, और उन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराया जाए जैसे वन आवश्यक संभव द्वारा व का शयन विशेषण, स्पर्श द्वारा श का शनानन विशेषण, वर्ष द्वारा श का ऋषि भृथ्री, कृति द्वारा रि का, तथा ज्ञान विज्ञान एवं यज्ञ द्वारा ज्ञ का उच्चारण अभ्यास कराया जाए। नवम, यदि पद समस्त हों संधियुक्त हों तो पहले उनका समास विग्रह या संधि विच्छेद कर लिया जाए, तब उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। दसम, उच्चारण शिक्षण में शीघ्रता नहीं बरतनी चाहिए। जितने ही विलंब एवं धैर्य से अध्यापक अपने छात्रों का को उच्चारण सिखाएगा उतना ही अच्छा होगा। एकादश, यदि संभव हो तो टेप रिकॉर्डर की भी सहायता ली जाए।